हमारा मौजू को हमने सबसे पहले सामर्रा की तारीख एक मुख्तसर बयान करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इमामैन अस्करियैन यानी इमाम अली नकी और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की सीरत का मुख्तसर तरीन एक जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे ताकि हमें एहसास हो, हमें पता हो कि हम जिन हस्तियों की ज़ियारत पर जा रहे हैं वो हस्तियाँ क्या थीं, उनके ज़माने में क्या चीज़ें थीं और उनकी सीरत क्या थी। और उसके बाद जो कुछ और ज़ियारतें हैं हज़रत हलीमा ख़ातून, बीबी नरजिस, सैयद मोहम्मद, ये कौन लोग थे, इनके बारे में एक मुख्तसर सा जायज़ा। शायद हम सारी गुफ्तगू ये तीनों इससे जो हैं सामर्रा की तारीख, इमामैन अस्करियैन की तारीख और फिर जो दीगर ज़्यारतें हैं, शायद अगर हम पूरी तरीके से इसको कवर नहीं कर सके तो इंशाल्लाह इसके पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस तैयार हैं, लेकिन शायद एक मैं समझ रहा था कि यहाँ आ गई होंगी और मैं अपना मोबाइल घर पर भूल आया, तो वो तैयारी थी, लेकिन ये कि आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल के थ्रू ये प्रेजेंटेशन जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पावर पॉइंट पे भी पेश किया गया है। सबसे पहले सामर्रा की जो तारीख है, ये शहर जो है वो कदीमी तरीन शहरों में से एक शहर है और इसके जो इब्तिदा है वो अशकानियान यानी 3000 साल कबल मसीह से इसकी तारीख यानी जो आसार कदीमा सामर्रा से हमें मिले हैं और जो उसके कब्रस्तान के और दीगर जो आसार मिले हैं वो 3000 साल कबल मसीह के, तो बस इस शहर की तारीख जो है इतनी ज़्यादा कदीम है। उसके बाद सासानियान का दौर था कि जो ईरानी हुकूमत के तहत थे और इसमें एक हमें ये मिलता है कि साम बिन नूह यानी हज़रत नूह के बेटे ने जो है वो यहाँ पर वक्त गुजारा था या यहाँ पर चलते थे और शायद इसीलिए इसका नाम जो सामरा यानी साम के गुजरगाह, इस एक एक इसकी जो है साम बिन रूह हज़रत नूह के बेटा की तारीख में यहाँ पे मिलता है एक कॉल के मुताबिक। एक सासानियान दौर में ज़ाहिर है कि ये जगह ईरानी एम्परेटरी के अंडर थी और उनको मालियात भेजा करते थे वहाँ के बादशाह को और इसीलिए बाज़ लोगों ने कहा है कि सामरा यानी महल हिसार, तो क्योंकि ये लोग मालियात देते थे ईरानी एम्परेटरी को इसलिए इसको सामरा कहा गया। खुलासे है कि ये शहर जो है फिर ईरान और रोम दो बड़ी ताकतों की जंग की एक आमाजगा ये शहर बना और उसके बाद तारीख में नहीं मिलता है कि उसके बाद इस शहर की एक बीच में गैप आता है और उसके बाद फिर तकरीबन 14 हिजरी कमरी से इसकी तारीख मिलती है कि इसको सबसे पहली दफ़ा जो है साद बिन अबी वकास ने इसको फतह किया और इसके बाद खलीफाए बनू अब्बास का ये शहर जो है काफ़ी मतमय नज़र रहा और मंसूर और हारून रशीद के दौर में इस शहर को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी गई। और अगर पावर पॉइंट होती तो मैं आपको थोड़ा सा नक्शा भी बताता कि ये सामर्रा जो है वो बगदाद के शुमाल में वाक़ है और अगर आप इराक का नक्शा देखेंगे तो उसमें दो दरिया जा रहे हैं, एक जो है दजला है और एक फुरात है। सामर्रा और बगदाद जो है वो दजला के ज़ाहिर है कि उस ज़माने में दरिया के इर्द गिर्द आबादी हुआ करती थी, तो दजला के दोनों तरफ ये शहर आबाद था। और करबला और नजफ़ जो है वो दरिया फुरात के इर्द गिर्द आबाद था। तो दौरान इस्लाम में चौदहवीं हिजरी में साद बिन अबी वक़ास ने इसे फतह किया, फिर खलीफा अब्बासी, और फिर सबसे पहले जो खलीफा अब्बासी थे मोतसिम, 218 हिजरी में इसमें 70,000 तुर्क फौजियों को बगदाद से सामर्रा भेजा गया और इसे एक फौजी छावनी के तौर पर आबाद किया गया। और फिर जब ये फौजी छावनी बनी तो फिर इसमें मसाजिद, तफरी गाहें, मुसाफिर खाने, बाजार, क्योंकि बादशाह भी आते जाते थे तो उनके महल बनना शुरू हो गया, और फिर इसको एक शहर किसी हैसियत हासिल हो गई और फिर इसको पायतख्त बनाया गया। यानी मोतसिम के ज़माने से इसको पायतख्त बनाया गया। और ये जो सर्रा मन रा, यानी अरबी में कहते हैं कि जिसने देखा वो खुशहाल हो गया, यानी वो शहर इतना अच्छी तरीके से उसको आबाद किया गया था कि उसको जो देखता था वो खुशहाल हो जाता था। काश के इंशाल्लाह आप लोगों को पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशंस भेज देंगे तो आप इसमें देख लेंगे। खुलासे ये कि बनू अब्बास के 35 साल तक ये जो है मरकज़ हुकूमत रहा, पहले बगदाद था, उसके बाद जो है 35 साल तक बनू अब्बास का ये पायतख्त रहा और ये तमाम दाखिली और ख़ारिजी सियासतों का मरकज़ रहा, यहाँ तक कि मोतज़ बिल्ला के दौर में फिर ये दोबारा से पायतख्त बगदाद शिफ्ट हो गया। बस 35 साल तक ये जो है वो मरकज़ हुकूमत बनू अब्बास रहा है और तमाम तर एक्टिविटीज़ हुकूमत की वो इसका मरकज़ था। लेकिन जो चौथी चीज़ है वो है शियों के लिहाज से, क्योंकि हमारे आइम्मा को यहाँ पर तलब किया गया, इमाम अली नकी को मुतवक्किल ने उनको यहाँ पर बुलाया, तो फिर शिया खुद ब खुद यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया और आबाद होना शुरू हो गया, तो फिर इसकी एक शनाख्त शियों के मरकज़ के तौर पर भी होने लगी। ये असल में कुछ चीज़ें इतनी मुश्किल मुश्किल हैं कि ये अगर पावर पॉइंट होती तो हो। खुलासे इमाम हसन अस्करी का घर वहीं पर वाक़ था, जो इस वक्त जो कब्र जो है और रोज़ा जो है ये इमाम हसन अस्करी का घर था, हत्ता के जो सरदार है वो भी इमाम हसन अस्करी के घर में शामिल था और सरदार को एक इबादतगाह की हैसियत हासिल थी और हमारे आइम्मा ने वहाँ पर जाके इबादत की। इसी घर के साथ एक मस्जिद भी थी और जब शिया अपने इमाम से मिलने जाते थे तो फिर मस्जिद में जो है जाके ज़ियारत की नमाज पढ़ा करते थे। और इसी घर में फिर इमाम अली नकी को भी तदफीन हुई उनकी, और फिर इमाम हसन अस्करी की, और इसी तरीके से उन दो ख़वातीन की भी, इमाम हसन अस्करी की पुपी और इमाम ज़माना की वालदा की भी कब्र वहीं पर। इसके बाद अब फिर ये आगे जब हम बढ़ते हैं आइम्मा के दौर से आगे बढ़ते हैं तो काचार के ज़माने में अहमद बिन दम्बली जो एक उस वक्त के जो वो बादशाह थे उसने सबसे पहले यहाँ पे हरम की तामीर कराई। तो जो हरम की शक्ल जो है सबसे पहले ये तकरीबन 1200 हिजरी में ये शुरू हुई, 1285 हिजरी में नासिरुद्दीन शाह जो कि ईरानी बादशाह हैं उन्होंने सोने का गुंबद यहाँ पे पहली दफ़ा तामीर करवाया 1285 हिजरी में। और इसका गुंबद ज़ाहिरन कहते हैं कि तमाम आइम्मा के रोज़ों से बड़ा गुंबद है और फिर इसमें बहुत तफसीलात हैं कि इसमें 72,000 ईंटें सोने की जो हैं वो नस की गई, जो ज़री है वो इस इस्फहान के जो एक्सपर्ट लोग थे ज़री, उन्होंने चांदी की ज़री जो है वो यहाँ पर तामीर कराई थी। तो ये मुख्तसर सा मुख्तसर सी तारीख थी सामर्रा की। अब जो है हम दूसरा हिस्सा जो कि खुद आइमा के बारे में है, इमाम अली नकी और इमाम हसन अस्करी के बारे में, ज़ाहिर है कि इन पर किताबें लिखी गई हैं, एक इमाम के बारे में इतने सारे वाक़यात हैं खुसूसन इन दो आइमा के बारे में, लेकिन अफसोस ये कि बहुत कम बात होती है। तो कम से कम मैं कुछ कुल्लियात इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा और जुज़ियात के लिए इंशाल्लाह फिर एक और वक्त या उस सफ़र के दौरान कोशिश करेंगे कि इन आइमा पर हम तफसील से गुफ्तगू कर सकें। प्लस ये कि अस्करियन जो कहा जाता है, जैसे काजमैन है इसी तरह अस्करियन इमाम अली नकी और इमाम हसन अस्करी को दोनों को मिलाकर कहा जाता है। इमाम अली नकी की विलादत जो है मदीना से नज़दीक एक गांव था सरिया नाम का, जो कि इमाम उसे काजिम ने आबाद कराया था। और यानी खुद हमारे आइमा आबादकारियाँ भी कहते थे, यानी जहाँ पे कहीं कोई आबादी नहीं है वहाँ जाकर जो है ज़िंदगी का आगाज़ किया करते थे। सरिया नाम की जगह पर, ये वही जगह है जो इमाम मूसा काज़िम ने आबाद कराई थी मदीना से चंद किलोमीटर के फासले पर। जो इमाम अली नकी की एक ख़ास बात है वो ये है कि आप सिर्फ 8 साल की उम्र में आपको मनसब इमामत नसीब हुआ, और एक 8 साल का बच्चा जो है वो इमाम वक्त बना। हमारे आइमा जो हैं, जो जो शियों को जो जो चीज़ें पेश आती हैं उसकी तैयारी वो बहुत पहले से कर लेते हैं। तो ये आपके वालिद जो हैं वो भी 8 साल की ही उम्र में जो है, 3 आइमा जो हैं हमारे, इमाम जवाद 8 साल की उम्र में, इमाम हादी 8 साल की उम्र में, और इमाम ज़माना 5 साल की उम्र में इमाम बने। ये 3 आइमा का सिन बहुत कम है। तो इन्हें फिर शियों के लिए भी मुश्किल था इस चीज़ को समझना, खुसूसन इमाम हसन अस्करी के बारे में, क्योंकि आपके जो भाई ये जो हम ज़ियारत पर जाते हैं सैयद मोहम्मद की, ये आपके बड़े भाई थे, और ये बहुत ही इंशाल्लाह आगे अगर वक्त मिला तो उसको बयान करेंगे, बहुत ही ज़ाहिर आबिद और बहुत ही परहेजगार हस्ती थी। शियों का ख्याल था कि अगले इमाम ये होंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में इमाम हसन अस्करी यानी इमाम अली नकी की ज़िंदगी में ही आपका इंतकाल हो गया था। मदीना जाते हुए रास्ते में ये जो बलद का जो आता है, तो हर इमाम के दौर में जो चीज़ें रूनुमा होती हैं आइमा उसकी पहले से पेशगीनी करते हैं और उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो इसीलिए जब इमाम अली नकी को जब बुलाया गया तो आपने अपने ख़ास शियों को बता दिया था कि मैं इस बेटे को छोड़ के जा रहा हूँ और ये आइंदा का, क्योंकि इमाम को ज़ाहिर है मगरिब से मालूम था कि वो वापस नहीं आएंगे। तो उन्होंने ये रिवायात हैं किताब कुतुब में भी मौजूद है कि उन्होंने ख़ास शियों को जमा करके तारुफ कराया इमाम अली नकी का, और फिर जो है वो सफ़र का आगाज़ किया। तकरीबन 33 साल इमाम अली नकी जो है वो मनसब इमामत पर फाइज रहे और फिर उनकी शहादत। लेकिन इसके बरक्स इमाम हसन अस्करी को फ़कत 6 साल मिले इमामत के। अगर थोड़ा सा हम वो करें तो ये 39 साल का एक अरसा है इमामत का कि जिसमें दो आइमा गुजरे, और सिर्फ इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि जब इमाम अली नकी की शहादत हुई है तो आपका सिन 41 ईयर का था, और इमाम हसन अस्करी सिर्फ 27 से 28 साल में आपकी शहादत होती है। तो ये ख़ुद बताती कि उस वक्त के ज़माने के हालात क्या थे और उस वक्त कितने मजालिम थे कि हमारे आइमा बहुत कम एज में शहीद हो रहे थे। खुलासा ये कि इमाम अली नकी का दौर जो है वो आपकी आप 8 साल की एज में इमाम बने और आपने 7 खुलफा को देखा। आपने 7 खुलफाए अब्बासी का दौर देखा, यानी वो इतना ज़माना दिगरगू था कि 7 खलीफा तब्दील हुए इमाम अली नकी के, इमाम हादी के दौर। लेकिन इसके बरक्स इमाम हसन अस्करी का, क्योंकि मुख्तसर दौर था 6 साल फकत, आपने दौरे इमामत जो है इमाम हसन अस्करी का फकत 6 साल का था, तो उस 6 सालों में 3 खुलफा का दौर आपने देखा। इसमें सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि उस जमाने के बादशाहों के क्या हालात थे, खलफाए बनी अब्बास के हालात क्या थे, शियों के उस वक्त 12 इमामी शियों के हालात क्या थे, और नंबर 3 हमारे आइम्मा ने यानी इमामैन अस्करियैन ने उन हालात के मुताबिक इकदाम किए और कौन कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की। तो उस वक्त का दौर जो है वो जाहिर है कि आपको मालूम है कि बनू अब्बास ने जब ये आए थे तो उन्होंने ये नारा लगाया था कि हम अहले बैत के हक़ को उनको वापस लौटाएंगे, और तहरीक का आगाज़ किया था। लेकिन जब वो हुकूमत उनको मिल गई तो फिर वो ये सब चीज़ भूल गए और उन्होंने अपने ही चीज़ों को आगे बढ़ाया। दूसरी अहम तरीन चीज़ जो बनू अब्बास की हुकूमत में हमें नज़र आती है वो ये है कि उन्होंने अरबों से शिफ्ट किया तुर्कों की तरफ हुकूमत को, यानी हुकूमत की जो पावर है वो कोशिश की कि अरबों से ले ली जाए और तुर्कों को जो है वो पावर्स दे दी जाए। तुर्क क्योंकि बहुत सख्त मिजाज थे और फौजी जंगी जहनियत रखते थे, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि वो तुर्क फौजी खुद इन बनू अब्बास के बादशाहों को कंट्रोल करने लगे, और महल में वही होता था जो ये लोग चाहते थे। और यानी हत्ता यहाँ तक हुआ कि एक बादशाह को तो उन्होंने सरदाब में खुद ही बंद कर दिया, और वहीं पर मोतज़ जो है वो उसी सरदाब में फिर उसकी मौत वाकई हो जाती। यानी ये तुर्क फौजी इतने स्ट्रांग हो गए थे कि वो बादशाहों को भी कंट्रोल करने लगे थे। तीसरी चीज़ जो अहम इस दौर में मिलती है वो इस वक्त के बादशाह जो हैं वो बहुत ज़्यादा अय्याश मशहूर थे, और बहुत ज़्यादा हज़ार हज़ार कनीज़ें इनके महल में हुआ करती थी, और हर वक्त अक्सर बादशाह जो हैं वो नशे की हालत में हुआ करते थे। सिवाय कहा गया है कि मोहतदी एक बादशाह उनका गुजरा है, अगर वो स्लाइड होती तो उसमें सारे जितने भी गुजरे हैं वो उसमें इनके बादशाह जितने भी 9 बादशाह इस दौरान जो गुजरे हैं उनका तذکرہ हो जाता। उसको बनू अब्बास का उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कहा जाता है कि वो एक वाहिद बादशाह था जो अहले बैत के लिए थोड़ा सा नरम गोशा रखता था, और अखलाकियात के लिहाज से भी किसी हद तक बेहतर था। लेकिन उलमा की तहकीक ये कहती है कि सिर्फ बज़ाहिर था और ऐसा हकीकत में नहीं था, फकत रियाकारी और दिखावा इसका ऐसा था कि मैं अहले बैत का चाहने वाला। अगली चीज़ जो थी वो ये थी कि बनू अब्बास की हुकूमतें बहुत ज़यीफ़ हो गई थी इस दौर में। उसकी वजह ये थी कि सल्तनत बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, दूसरी वजह ये थी कि ये खुद आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें किया करते थे। उसी का एक का बेटा अपने बाप को मरवा रहा है, और इस तरीके की यानी महल में साजिशें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और तुर्क फौजियों का जैसे मैंने बताया कि असर व रसूख बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और अलवी नहजतें काफ़ी इस दौर में हमें मिलती हैं। ये अलवी नहजतें, ये जो क़याम थे, ये सारे के सारे ही नाकाम हो गए, और उसकी भी वजूहात तारीख़ में बताई गई हैं। नंबर 1 ये कि सद दरसद इस्लामी नहीं थे, और हमारे इमामों से बहुत ज़्यादा रहनुमाई नहीं लेते थे, और बग़ैर किसी प्लानिंग के ये क़याम अलवी इसमें फ़िरक़े ज़ैदिया, ज़ैदी फ़िरका और इस तरह के फ़िरके जो हैं वो ज़्यादा फ़ाल थे और ज़्यादातर पर्सनल सेंटर्ड थे, यानी एक शख्स के गिर्द कुछ लोग जमा हो जाते हैं और वो फिर तहरीक चलाते हैं और क़याम करते हैं। तो इन क़यामों को भी सरकूब कर दिया गया। इसी तरीके से ये दौर जो है बहुत ज़्यादा शियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़ुल्म व सितम का दौर समझा जाता है और माना जाता है। इस दौर में सारे ही जितने हुक्मरान थे वो उन्होंने ज़ुल्म व सितम की दास्तानें रकम की, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़ालिम बादशाह जो है वो मुतवक्किल अब्बासी मशहूर है और इसने सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा है 16 साल की हुकूमत का, यानी इन दो आइम्मा के दौर में कोई भी बादशाह जो है वो 16 साल से ज़्यादा हुकूमत नहीं कर सका और 9 बादशाह तब्दील हुए हैं इस दौर में। ये जो मुतवक्किल है ये मशहूर व मारूफ इसके यानी नसर बिन अली, जिसने जो आपके दरबार में ये मुतवक्किल के दरबार में हुआ करता था और पंजतन की जब उसने तारीफ़ बयान की तो 1000 ताजियाने की सज़ा मुतवक्किल ने सुनाई। इसी तरह इब्ने सिक्कीर जो कि आपके बच्चों ये मुतवक्किल के बच्चों को पढ़ाने के लिए आता था और बहुत ही इल्मी शख्सियत थी, इसीलिए उसको ये एज़ाज़ मिला था कि बादशाह के बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। और एक दिन उसने वो सवाल पूछ लिया कि हसनैन ज़्यादा अफजल हैं या मेरे ये दो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अफजल हैं, तो उसने जवाब दिया कि हसनैन तो क्या अली का जो कंबर है वो भी अफजल है तुमसे और तुम्हारे बच्चों से। तो फिर जो है इब्ने सिक्कीर की जो है ज़बान बुद्धि से खींच दी गई। इस इतना ज़्यादा कीना और इतना ज़्यादा दुश्मनी रखता था अहले बैत से, वो शौरा जो कि अहले बैत की शान में नऊज़ु बिल्लाह गुस्ताखी किया करते थे उनको इनाम और इकराम किया जाता था और अपने फ़ौजी भी वो उन इलाकों से रखते थे कि जहाँ से जो शिया दुश्मन इलाके थे वहाँ से फ़ौजियों को रिक्रूटमेंट किया जाता था। और जो सबसे अहम तरीन चीज़ मुतवक्किल अब्बासी के दौर में है वो मशहूर तरीन वाक़िया है कि जो इमाम हुसैन की कब्र को मिसमार करने की उसने नाकाम कोशिश की। ये भी एक मौजू है कि इमाम हुसैन की कब्र को तारीख में कितनी दफ़ा ढाया गया, कितनी दफ़ा इस पर हमले किए गए, और एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी है इंशाल्लाह वो आपको भेज दी जाएगी जिसमें ये बयान मिलता है। मंसूर ने भी कर्बला पर हमला किया है, हारून रशीद ने भी 193 हिजरी में जो है शहर कर्बला के तमाम दरख्त उखाड़ दिए थे। और ये क्यों करते थे, ये बनू अब्बास क्यों करते थे, क्योंकि शिया जो है वो कर्बला के गिर्द और ज़ियारत के लिए जमा हो जाते थे, इसलिए जो है वो ये चीज़ बार बार वो चाहते थे कि ये कोई मरकज़ ना बने शियों का। और मुतवक्किल ने भी 233 हिजरी में, फिर दोबारा से 236 हिजरी में और फिर आखिरी दफ़ा 237 हिजरी में जो है उसने कर्बला पर कर्बला को वीरान करने की कोशिश की। तो सबसे पहले जो है अतराफ के जितने भी घर थे उन सबको मिसमार कर दिया गया ताकि वहाँ पर कोई रिहाइश इख्तियार ना करे। फिर उस पर भी बस नहीं चला तो उस पर नहर का पानी छोड़ दिया गया और वो सब आप लोगों को पता है कि वो पानी जो है वो कब्र को पर नहीं जा सका। तो फिर उसने हल चलाने का कहा गया कि यहाँ पे खेती बाड़ी की जाए। फिर जब खेती बाड़ी भी नहीं हो सकी, जानवर भी उस कब्र पर नहीं जाते थे, तो फिर जो है उसने कहा कि ज़ियारत पर शियों पर पाबंदी है, मगर ये कि वो अपने आज़ा और फिर वो वाक़ बहुत सारे तारीख में मिलते हैं। तो ये भी एक मौजू तहकीक है कि करबला पर कितनी दफ़ा जो है वो हमले किए गए हैं, कितनी दफ़ा उसको वीरान करने की कोशिश की गई है, और लोगों ने इस ज़्यारत के लिए अपने आज़ाद तक कुर्बान किया। अगर हम चंद दिन चल लेते हैं तो ये तो इस पे वो नहीं, लोगों ने यानी दो दो एक दोस्त शहीद होता था ताकि दूसरा शख्स जो है वो ज़्यारत कर सके। तो आप ये देखेंगे आइमा ने इस ज़्यारत को कितनी ज़्यादा अहमियत दी थी। और अहद को बुला दें तो एक हमने क्लिप रखा होगा। तो ये शायद लोगों ने शियों ने इतनी कुर्बानियाँ इस ये हम जो आज जो आसानी से ज़्यारत कर पाते हैं तो इसमें लोगों ने अपने हाथ पैरों की कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके आज ये सरजमीन जो है हमारे लिए ज़्यारत के लिए आमादा है। अब इसी दो आइमा के दौर में शियों के क्या हालात थे उस पर बस मुख्तसर से गुफ्तगू करते हैं और आपकी जहमतों को तमाम करते हैं। सबसे पहले ये कि ये जो दौर था क्योंकि बनु अब्बास अपनी ही मुश्किलात में घिरे हुए थे और बनु उमैया और बनु अब्बास के यानी इमाम जाफर सादिक के दौर के बाद से शिया बहुत फैली है, मुख्तलिफ इलाकों में फैली है। खुसूसन जब इमाम रज़ा जब नेशापुर से वो लंबा सा सफ़र करके जब मशहद तक गए हैं तो शिया बहुत सारे इलाकों में फैल चुके थे, क्योंकि तकिये की भी वजह से वो मुख्तलिफ इलाकों में चले गए थे। जो ज़्यादा कभी शिया इलाके उस ज़माने में मशहूर थे वो असल तो ज़ाहिर है कि सामर्रा, बगदाद, कूफा, बसरा ये तो असल स्ट्रॉन्ग होल्ड थे शियों के, लेकिन कुम में, नेशापुर में यहाँ भी शिया जो है बहुत मुनज़्ज़म तरीके से आबाद हो चुके थे और फिर नए इलाके भी आबाद हो गए थे जिसमें मदाइन है, आबे है, खुरासान, यमन, रई, आज़रबाईजान, जुर्जान, ये वो नए इलाके थे कि जहाँ पे शिया जा चुके थे। दूसरी अहम तरीन चीज़ ये कि हुकूमती तशद्दुद बेतहाशा शियों पर मौजूद था और उसकी वजह ज़ाहिर एक ही थी कि शियों का अकीदा ये था कि सिवाय इमाम वक्त के किसी को हुकूमत का हक हासिल नहीं है। तो इसीलिए बनु अब्बास जो है वो किसी भी सूरत शियों को मजबूत होने नहीं देख सकते थे, क्योंकि शियों का मजबूत होना यानी हुकूमत को हाथ से देना, लिहाजा वो आइमा को कैदोबंद करते थे, नज़रबंद किया करते थे। आम शियों का कत्लेआम हुआ करता था, जो बुज़ुर्ग सादात थे वो जलावतन होते थे, और बदतरीन तासुब ये जो मुतवक्किल के 16 साल थे, बदतरीन तासुब जो है शियों की तरफ रवा रखा जाता था, यहाँ तक कि मिस्र के गवर्नर को मुतवक्किल हुक्म जारी करता है। आप देखेंगे यानी क्या ज़माना था, ये क्या ज़माना था कि शियों को कोई ज़मीन ख़रीदने का हक हासिल नहीं है, शिया किसी घोड़े पर सवारी करने का हक नहीं है, एक से ज़्यादा गुलाम रखने का हक हासिल नहीं है, और अगर उसका किसी के साथ केस हो काजी के सामने तो काजी के सामने अगर शिया का जो ओपोनेंट है पहले उसकी रुदात सुनी जाएगी, बाद में शिये की रुदात सुनी जाएगी। तो ये बदतरीन तासुब उस दौर में रवा रखा गया मिस्र के गवर्नर को मुतवक्किल ने, ये तारीख का हिस्सा है। इसलिए शिया जो है इक्तिसादी तौर पर बहुत ज़यीफ़ हो गए और उनको बैतुल माल में से कोई चीज़ नहीं दी जाती थी। अतः वो मारूफ वाक़या के मदीना में शिया घराने ऐसे थे कि उनकी ख़वातीन के पास नमाज के लिए एक ही लिबास था जो कि बारी बारी एवज किया जाता था ताकि वो नमाज पढ़ सकें। ऐसे दौर में आइम्मा ने अपने शियों की हिदायत की और उनकी मदद की और उनको रबते में रखा। اب ان حالات میں ہمارے آئمہ نے کیا حکمت عملی پیش کی؟ سب سے پہلے جو ہے ایک قوی نیٹ ورک شیعوں کا موجود تھا امامین عسکریین کے دور میں، وکلا کا، یعنی آپ نے ہر علاقے میں ہر جگہ پر اپنے نمائندے مشخص کیے ہوئے تھے، ان سے خط و کتابت اور ارتباط رہتا تھا. یہ تفصیلات بہت ساری ہیں، یعنی چار حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا وکلا کو، چار علاقوں میں. تو خطوط آئمہ بہت لکھتے تھے، تاریخ میں ہمیں بہت بڑے بڑے خطوط امام علی نقی کے ملتے ہیں، امام حسن عسکری کے ملتے ہیں. وجوہات آتی بھی تھیں اور پھر آئمہ بھی تقسیم کیا کرتے تھے انہی نمائندوں اور انہی وکلا کے ذریعے سے. دوسرا جو اہم کام جو ہمارے آئمہ کر رہے تھے، وہ غیبت کے لیے تیاری کروا رہے تھے اپنے شیعوں کو، کہ اگر امام وقت ان سے ڈائریکٹ نہ مل سکے تو کیسے وہ اپنی چیزوں کو برقرار رکھیں گے، اپنے مسائل پوچھیں گے، اپنی وجوہات پہنچائیں گے. تو یہ بھی ایک حکمت عملی کے تحت، جب آئمہ کا نظر بند ہونا، خود شیعوں کو ایک تیاری کرانا تھا کہ اگر آپ ڈائریکٹ نہیں مل سکتے تو کس طریقے سے ملا جا سکتا ہے. یہ وکلا کا نظام بھی اسی لیے تھا. علماء کی کئی سارے علماء کی مورخی اور آئمہ نے، امام علی نقی نے بہت سارے علماء کا تعارف کرایا کہ ان سے سوالات پوچھے جائیں، یا کوئی جب آ کے پوچھتا تھا تو وہ اپنے علماء کی طرف ارجاع دیتے تھے کہ ان سے پوچھا جائے دربار میں. پھر احادیث کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جس میں خود غیبت کی تیاریاں قائم، کے امام زمانہ کے بارے میں احادیث، خود اس زمانے کے بارے میں احادیث کا بیان کرنا ہے، علماء کے بارے میں احادیث کا. مثلا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء غیبت قائم آل محمد کے زمانے میں محافظ دین، علم و یقین کے رہبر، ان کی مثالیں شیعوں کے لیے کشتی کے ناخدہ کی مثال ہے، وہ ضعیفوں کے دلوں کو تسلی دینے والے ہوں گے، اور وہ افضل الناس، لوگوں میں سب سے بہترین ہوں گے، اور قوم کی قیادت کریں گے. اسی طریقے سے دعا اور زیارتوں کے ذریعے سے بھی آئمہ نے بتایا کہ ان کا انٹروڈکشن پیش کیا، آئمہ کا تعارف پیش کیا، اہل بیت کا تعارف پیش کیا، اہل بیت سے کس طریقے سے تعلق رکھنا ہے. یہ جو دعائے ندبہ ہے یہ بھی امام علی نقی سے ظاہر نقل کی گئی ہے، اور ظلم کی مخالفت کے بارے میں بھی بتایا گیا. ایک اور چیز جو اس زمانے میں تھی وہ تھی غلو، جو ہمارے دور سے مشابہت رکھتی ہے، کہ اس دور میں بھی بہت سارے افراد غالی تھے، یعنی غلو کرتے تھے، اور امام نے بہت سارے لوگوں کو امام علی نقی کے شاگرد کے طور پر، کیونکہ یہ کسی نہ کسی کا سہارا لیتے ہیں، یہ اپنے طور پر اس لیے اپنے آپ کو شیعہ پیش کرتے تھے یہ غلو کرنے والے، کیونکہ امام کی مقبولیت لوگوں میں زیادہ تھی، تو کہتے تھے کہ ہم آئمہ کے ماننے والے ہیں، امام ہماری طرفداری کیوں نہیں کرتے، کیونکہ وہ تقیہ کرتے ہیں. یہ توجیہ پیش کیا کرتے تھے اس زمانے میں. یہاں پہ بہت سارے غالیوں کے نام ہیں جن کے بارے میں پھر امام نے خطوط لکھے، واضح طور پر بتایا. مثلا فارس بن حاتم، بار بار سوال پوچھا جاتا تھا، آپ نے واضح طور پر بتایا کہ وہ کافر ہیں. حسین بن عبید، جنہیں وہ کم میں ہوا کرتے تھے، انہیں کم سے باہر نکال دیا گیا اسی غلو کرنے کی بنا پر. فتح بن یزید جرجانی، جو اس بات کے قائل تھے کہ آئمہ کو کھانے پینے کی نیاز نہیں ہے، اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آئمہ جو ہے وہ ان کو ہو. تو اس پر جو ہے آئمہ نے ہمارے بھرپور اس کا مقابلہ کیا. غالیوں پر نفرین احادیث میں ہیں، کئی ساری احادیث ہیں جس میں آپ نے لعنت قرار دیا ہے، کہا یہ ہم میں سے نہیں ہیں، اور ان کی تکذیب کی ہے، مفصل احادیث. اس کے علاوہ علمی میدان میں جہاں جہاں بھی امت مسلمہ کو مشکلات درپیش تھی، اس زمانے میں دو علمی کلامی مسائل بہت زیادہ درپیش آئے، ایک قرآن کا خالق اور مخلوق ہونا، یہ ایک بحث اس زمانے میں بہت زیادہ مشہور تھی کہ آیا قرآن بھی خدا کی طرح قدیم ہے یا نہیں ہے، اور آئمہ نے اس کے بارے میں اپنا موقف پیش کیا. اسی طریقے سے تحریف قرآن کے بارے میں بھی کافی شکو و شبہات پیش کیے گئے، اور امام علی نقی کی حدیث تحفۃ العقول میں یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اس قرآن پر متفق ہے، اس موجودہ قرآن پر متفق ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، لہٰذا آپ نے اپنے شیعوں کو اسی قرآن کی طرف ارجاع دیا. اور آخری چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے کثرت سے معجزات اور کثرت سے خبرہائے غیبی دی گئیں، کیونکہ شکوک و شبہات تھے آئمہ کے بارے میں، ان کی امامت کے بارے میں، لہٰذا بہت سارے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ جس میں آپ نے جو ہے وہ معجزات دکھائے، اپنے شیعوں کو غیب کی باتیں بتائیں، اور اگر آپ تاریخ کی کتابیں کھولیں گے تو اس میں بہت سارے معجزات ہیں. بس انشاءاللہ آپ دو تین منٹ میں اور لوں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کریں گے کہ ان دو آئمہ کے علاوہ بھی جو قبریں موجود ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے امام زمانہ کی والدہ کی قبر بھی اسی زیر گنبد موجود ہے، تو آپ جو ہیں وہ بادشاہ روم قیصر روم کی پوتی تھیں، اور آپ نے خواب میں مسلمان ہوئی تھیں. خواب میں آپ نے خواب دیکھا تھا کہ رسول خدا نے حضرت عیسیٰ سے آپ کا رشتہ مانگا تھا، اور جناب سیدہ نے آپ کو اسلام قبول کروایا تھا، اور خواب ہی میں آپ کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ آپ کی شادی جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگی. ایک تفصیل ہے، مفصل خواب ہے یہ، اور پھر اسی خواب میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جب بادشاہ روم اپنی جنگ میں جب ہارے گا تو وہ اپنے آپ کے کنیز کی شکل میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور بغداد تک آئے. امام نے جو ہے کچھ صحابی جن کے نام بھی تاریخ میں موجود ہیں ان کو بھیجا، ان کو کہا کہ اس کنیز کو لے کر آئے ہمارے پاس، اور پھر جو ہے وہ جناب نرجس خاتون بنی. اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو عربی کیسے آتی ہے اگر آپ روم کے رہنے والے ہیں، تو ان کے دادا نے یعنی پہلے سے کچھ لوگ باخبر تھے کہ یہ کیا ہو. آپ کا جو زیارت نامہ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، یعنی اس زیارت نامے میں آپ کو صدیقہ، مرضیہ، تقیہ، نقیہ، رضیہ کہا گیا، آپ کو مادر موسیٰ کے مثل قرار دیا گیا ہے، انجیل میں آپ کی توصیف ہوئی ہے اس زیارت نامے میں کہا گیا، آپ اللہ کے راز کی امین تھی، عارفہ تھی، مومنہ تھی، مستبصرہ تھی، اور جنت میں آپ کا ایک مقام اور مکان ہے. یہ تھی جناب نرجس خاتون. اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑی ہستی جن کی قبر وہیں پر موجود ہے وہ تھی حضرت حکیمہ خاتون، جو امام محمد تقی کی بیٹی اور امام علی نقی کی بہن تھی اور امام حسن عسکری کی پھوپھی تھی. اسی لیے جو ہے وہ کہا گیا آپ کی زیارت میں، السلام علیکم بنت ولی اللہ، السلام علیکم اخت ولی اللہ، اور السلام علیکم امتا ولی اللہ. بالآخر یہ سلائڈس آ گئی. آپ جو ہیں وہ حامل اسرار آئمہ آپ کی زیارت میں کہا گیا ہے آپ کو، کیونکہ امام حسن عسکری آپ پر بہت زیادہ ڈپینڈ کیا کرتے تھے، اور نیم شعبان کی شب کو آپ ہی نے اپنی جو ہے پھوپھی جان کو کہا کہ آپ جو ہیں گھر میں تشریف رکھیں اور سب سے پہلے امام زمانہ کی ولادت کی خبر دیکھیں. تمام مسلمان فرقوں میں یہی اختلاف ہے کہ امام زمانہ پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، तो सबसे पहली खबर इमाम हसन अस्करी को बीबी हकीमा खातून ने दी थी कि आपकी विलादत हो चुकी है, तो आपके जो मकाम है और मंजिलत है वो बहुत ज़्यादा है। और बीबी नरजिस खातून को, नेक्स्ट, बीबी नरजिस खातून की तरबियत भी आपने इन्हीं के ज़िम्मे सुपुर्द की थी। बहुत सारे इमाम ज़माने से मुतालिक लोग सवालात आपसे पूछा करते थे, कई सारी रिवायात आपके ज़रिए से नकल हुई हैं और हमारे पास आई हैं। और आपका जो ज़्यारतनामा है ये अब्बास उम्मीद ने भी लिखा है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही ज़्यारतनामा है जो मासूमे कुम का ज़्यारत हम पढ़ते हैं। और आपको मालूम है कि उसमें कहा गया है कि आपके पास इन्ना लके शान मिन शान इंदल्लाह, अल्लाह के पास आपके ख़ास शान है और आप जो हैं हौज़े कौसर पर शफात कराएंगे हज़रत मासूम कुम की। तो इसलिए इनकी भी हस्ती जो है वो किसी से कम नहीं है। और 260 हिजरी में आपका इंतकाल होता है। इसके बाद अगली जो सामर्रा में जो अगली जो ज़्यारत है वो सरदाब इमाम ज़माना की। सरदाब इमाम ज़माना की ज़ाहिर है कि वहाँ पे कोई इमाम तो मदफून नहीं है, लेकिन अजीब ये है कि जो आदाब बयान किए गए हैं कि गुस्ल, यानी अगर आप देखेंगे तो इसने दुखूल, यानी सारी चीज़ें वही हैं जो एक हरम के लिए हैं। तो इस सरदाब को भी एक हरम की हैसियत हासिल है और उसकी ख़ास ज़्यारतें हैं जो कि आप लोग देखते हैं ज़्यारतें वहाँ में। एक इसमें ज़्यारत जो है वो तमाम आइमा से मुतालिक भी है, उसके बाद दुआ भी है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि तजदीद अहद भी, यही इन क्लासेस की वजह ये है कि हम लोग चले जाते हैं होकर भी आ जाते हैं। इन ज़्यारतों में एक ज़्यारत तजदीद अहद है इमाम ज़माना से, ये बहुत अहम है कि हम अपने तजदीद कर सकें। और एक दुआ है जो अगर कोई भी मुसीबत में हो, हम आम ज़िंदगी की में भी है हमारे लिए, कि अगर कोई मुसीबत में आ जाए तो फजर की नमाज़ के बाद और इशा की नमाज़ के बाद ये दुआ पढ़ने वाली है जो कि अपनी ज़्यारात में दी गई है। हो, इसके बाद आखिरी जो है वो है जो सैयद मोहम्मद का मरकज़ जो बलद में है, वो मैं आपको तकरीबन बता चुका हूँ कि आप जो है इमाम हसन अस्करी के बड़े भाई थे और बहुत ही आबिद और जाहिद और आलिम शख्सियत थे आप। और सामर्रा से मदीना जाते हुए आपका इंतकाल इमाम अली नकी की ज़िंदगी में ही हो चुका था। और इमाम हसन अस्करी ने आपके इंतकाल पर बहुत गिरिया किया था और गिरेबान चाक किया था। कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि आप इतना ज़्यादा गिरिया, इतना गिरेबान चाक करना, तो आपने फिर वो रिवायत बताई थी कि मूसा भी हारून से जब जुदा हुए थे तो उनकी भी यही हालत थी। और आज जो है वो इराक में आपको साहिब करामत समझा जाता है, अगर किसी की कोई भी हाजत होती है तो वो अपनी हाजत को तलब करने के लिए बलद जाते हैं सैयद मोहम्मद के यहाँ। और कुछ चीज़ें बड़ी अजीब व गरीब हैं कि मशहूर है कि वहाँ पर बहुत जलीलुल कद्र सैयद हैं, तो हरम में कोई चीज़ चोरी नहीं कर सकता, अगर कोई चीज़ चोरी करता है तो उसके साथ कोई बहुत बड़ा मसला होता है, ये भी हमारी रिवायात में लिखा हुआ है। खुलासे ये कि अगर सिर्फ शुरू की स्लाइड बता दें तो मैं कुछ नक्शा वक्शा इनको, माजरत के बहुत ज़्यादा आप लोग का वक्त लिया। अगर अगर इस ये लैपटॉप यहाँ आ सकता है, हिल जाएगा। ठीक ठीक ठीक, आप शुरू बिल सबसे पहला बस यही है, इसको ज़रा बड़ा कर दें। अब आप ये बगदाद से ऊपर देख रहे हैं सामर्रा, मैंने आपको बताया था कि दो दरिया हैं, दजला, एक दजला जा रहा है, एक फुरात जा रहा है। इराक, पूरे इराक से दो दरिया गुजर रहे हैं और बगदाद और सामर्रा दजला की साइड पर है और करबला नजब जो है ये फुरात जा रही है, जो दूसरी जो लकीर है वो फुरात है। आगे अब ये तो कुछ तस्वीर हैं इसमें, अहम जो तारीखी तस्वीर हैं इंशाल्लाह, ये जो जितने भी अब्बासी खुलफा हमारे इन दो आइमा के दौर में गुजरे हैं, मामून रशीद से शुरू होते हैं और मोहतदी पे ख़त्म होते हैं। आप देखेंगे सब का दौर हुकूमत कितना मुख्तसर है। मामून रशीद तो ये तो क्योंकि इनका दौर तो ज़्यादा था, लेकिन चार साल इमाम अली नकी के चार साल आपके थे, और मोतसम 10 साल के बाद मारा गया, वासिक 5 साल, मुतवक्किल की सबसे ज़्यादा जो मैंने बयान किया था सबसे ज़्यादा हुकूमत जो है मुतवक्किल की थी, और मुतवक्किल के दौर में ही सबसे ज़्यादा जुल्म सितम शियों पर रवा रखा गया। मुंतसिर की 6 माह की हुकूमत थी, फिर मुस्तईन की 6 साल की, फिर मोतस की 5 साल की, और फिर मोहतदी की जो है वो हुकूमत 1 साल की थी। क्योंकि हमने एक अज़्म उठाया है कि हम अपनी ज़ियारत जो है वो इस मारफत के साथ करें कि हम अपने आइमा के बारे में भी जान सकें कि उनकी तारीख के अदवार क्या थे, और उस जगह का भी तारीख के बारे में हमें ये भी, ये जो मुतवक्किल ने इस तरीके के मीनार और तामीर कराए थे जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। इंशाल्लाह खुदावंद मुताल से तौफीक तलब करते हैं कि हमें अपने आइम्मा की ज़्यादा ज़्यादा मार्फत अता करने की तौफीक इनायत फरमाएं, और हमारी ज़्यारत जो है वो मार्फत के साथ हो और उनकी बारगाह में काबिल कबूल हो, और हमें हमारे आमाल इस लायक हों कि हम आपके हुजूर में हाजिर होने के काबिल हो सकें। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल।